हरि शरणम। आज भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत प्रवचन का अंतिम दिवस है, पूर्वान्हकालीन बैठक है, अंतिम बैठक है। यथामति यथा समय शेष चरित्रों का स्मरण किया जाएगा। कल तक की कथाओं में चर्चा कर चुके हैं, भगवान ने ब्रज लीला करके ब्रजवासियों को परमानंद प्रदान किया। मथुरा पहुंच करके भगवान ने कंस का वध किया, शांदीपनि महर्षि के यहां विद्या अध्ययन किया, दक्षिणा में मृत गुरु पुत्र को वापस किया और पुनः भगवान श्री मथुरा पधारे। समनंदन प्रजा सर्वा दृष्टा दृष्ट्वा राम जनार्दनौ अपश्यंतो बहु हानि नष्ट लब्ध धना इव। मथुरा की प्रजा भगवान कृष्ण बलदेव का दर्शन करके अतिशय प्रसन्न हो गई। जैसे कोई बहुत दरिद्र हो, कंगाल हो और उसे प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाए और सहसा उसका धन सब चला जाए तो वह व्यक्ति अतिशय दुख से भर जाता है। दुख से इसलिए भर जाता है कि धन था ही नहीं तो ज्यादा दुख नहीं, था और फिर चला गया इस बात का कष्ट ज्यादा है। एक बार धन के द्वारा उसे कुछ उसका कुछ स्वाद मिल चुका है, स्वाद है नहीं वस्तुतः, लेकिन उसने मान लिया है कि उसमें कुछ स्वाद हमको मिल गया, फिर धन नष्ट हो जाए तो अधिक पीड़ा होती है। ऐसे ही पहले एक बार भगवान प्राप्त भय और फिर चले गए गुरुकुल में तो मथुरावासी अत्यंत पीड़ित हुए। एक वर्ष तक तीव्र विरह का अनुभव भगवान ने मथुरावासियों को कराया, क्योंकि विरह में ही प्रेम पुष्ट होता है, इसलिए भगवान विरह का अवसर अपने प्रेमियों को प्रदान करते हैं। भगवान का दर्शन करके सब अतिशय आनंद में भर गए। भगवान गुरुकुल से लौटे हैं, भगवान की घनिष्ठ मित्रता है श्री उद्धव जी से। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितस्य सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। वृष्णिवंशियों में श्रेष्ठ पुरुष, प्रधान पुरुष बृहस्पति के साक्षात शिष्य और श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय अंतरंग सखा श्री उद्धव जी महाराज। बहुत प्रीति है उद्धव जी की भगवान के चरण कमलों में। श्री उद्धव जी महान ज्ञानी भक्त हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि उद्धव जी का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही वे रोए नहीं, अपितु जन्म लेते ही कृष्ण कृष्ण का 3 बार उच्चारण किया, कृष्ण 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 3 बार का, और 3 बार उच्चारण करके उस नवजात स्थिति में उन्हें मूर्छा होता। इस प्रकार की प्रसिद्धि संतों में है कि वे जन्म लेते ही कृष्ण शब्द का उच्चारण श्री उद्धव जी ने। और वृष्णवंशियों में उद्धव जी भगवान की विभूति हैं, भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की ही विभूति श्री उद्धव जी है। उद्धव जी से भगवान की बड़ी घनिष्ठ मित्रता, ऐसे अंतरंग सखा हैं कि खाना पीना सोना घूमना फिरना सब एक साथ ही होता है, निरंतर भगवान के साथ रहते। तो जब कभी भगवान एकांत में होते तो वृंदावन का स्मरण करके, नंद यशोदा जी का स्मरण करके, ब्रज गोपियों का स्मरण करके, सखाओं का स्मरण करके, श्री किशोरी जी का स्मरण करके वे अतिशय प्रेम से व्याकुल हो जाते, विह्वल हो जाते, रुदन करने लग जाते। यह देखकर उद्धव जी को अतिशय आश्चर्य होता। आप मन में विचार करते कि जो परमात्मा सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय है, जो विभू है जिसका वियोग कभी किसी से संभव नहीं, सबके साथ जिसका सदा सर्वदा का नित्य संयोग है, वह परमात्मा रोता है, अज्ञानी जीव की तरह रोता है, आश्चर्य है। भगवान की विभुता में तो हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इनका रोना हमारी समझ में नहीं आता। उद्धव जी को पूर्ण विश्वास है ही भगवान है, ब्रह्म है, परब्रह्म है, लेकिन इनके रोने का रहस्य हमारी समझ में नहीं आ रही, क्यों रो रहे हैं। कभी कभी उद्धव जी कह भी देते, प्रभो आप जैसे सामान्य कोई संसार का व्यक्ति किसी का स्मरण करके दुख का अनुभव करे, रोने लग जाए, ऐसे ही आप भी रुदन करते हैं। आपके रुदन को देख करके हमको अतिशय मोह उत्पन्न होता है। यह रुदन आपका सम्यक नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं। भगवान ने कहा कि देखो उद्धव जी, वे ब्रजवासी कितना अधिक प्रेम करते हैं, वे ऐसे प्रेमी हैं कि उनके प्रेम का वर्णन संभव नहीं है। वे अतिशय प्रेम में विह्वल ब्रजवासी हमारी मैया यशोदा, नंद बाबा, समस्त ब्रज गोपी गोपगण, वे सब प्रेम से विह्वल होकर हमारा स्मरण करते हैं और मैं भी अतिशय प्रेम से विह्वल होकर उनका स्मरण करता हूं। उन्हें हमारे स्मरण में अतिशय आनंद मिलता है और मुझे उनके स्मरण में अतिशय आनंद मिलता है। उद्धव जी ने पूछा, भगवान वे रोते क्यों हैं? भगवान ने कहा कि वे ऐसा मानते हैं कि हम उनसे दूर हैं। मईता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रिया, वे हमें अपना निकटस्थ नहीं मानती अपितु तो दूरस्थ मानती हैं। तो दूर मान करके वे वियोग का उन्हें अनुभव होता, वे रोती हैं। और यद्यपि मैं सदा सर्वदा उनके निकट ही हूं अंतर्यामी रूप से, लेकिन फिर भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य, हम के अनुसार वे हमारे वियोग में व्यथित होते हैं, हम उनके वियोग में व्यथित होते हैं। तो भगवान आप में प्रेम ब्रजवासियों ने अवश्य किया, किंतु आपके जो आपका जो ज्ञानमय स्वरूप है उस स्वरूप का परिचय उन्हें प्राप्त नहीं है। तत्वतः वे आपसे विमुख ही हैं, केवल आपके इस स्वरूप में ही उनका अनुराग है। आपकी महिमा क्या है, आपका तत्व क्या है, आप सब में विद्यमान हैं, सबके अंतर्यामी हैं, इस बात को वे नहीं समझते। यदि इस बात को वे समझ जाएं तो उन्हें यह अनुभव नहीं होगा कि हमसे दूर हैं, निकट अनुभव करेंगे। और जब निकट अनुभव करेंगे तो उनका रोना गाना भी छूट जाएगा और आपके भी रोने गाने से छुट्टी मिल जाएगी। आपने उन्हें ज्ञान क्यों नहीं दिया? आपको उन्हें ज्ञान देना चाहिए था। भगवान हंसने लगे, कहा उद्धव तुम अभी प्रेम की महिमा नहीं समझते। वे इतने विशुद्ध प्रेमी हैं, इतने उच्च कोटि के प्रेमी हैं कि उनके हृदय में प्रेम लबालब भरा हुआ है और प्रेम के अतिरिक्त किसी ज्ञान के प्रवेश की वहां गुंजाइश नहीं है, अवकाश ही नहीं है दूसरी बात भीतर घुसे। उनका चित्त तो प्रेम से लबालब भरा हुआ है, दूसरी बात वे सुनना नहीं चाहते। उद्धव जी ने कहा, प्रभो आपने क्या प्रयत्न किया उन्हें ज्ञान देने का? कहते उद्धव, प्रेम जो है वह बहुत उत्तम है। प्रेम को प्रेमियों ने पंचम पुरुषार्थ कहा है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, प्रेम पुमर्थो महान, महान पुमर्था प्रेमैव। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ हैं, इनसे भी आगे की वस्तु है प्रेम। यही कारण है कि मुक्त पुरुष भी भगवत प्रेम के लिए लालायित देखे जाते हैं। अब ज्ञान के द्वारा वे मुक्त हो चुके हैं, अब कोई बंधन उनका शेष नहीं बचा। लेकिन इसके बाद भी वे प्रेम के लिए इतने प्यासे हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वे भी प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने तो एक जगह लिखा है, विमुक्ताः अपि लीलया विग्रहं कृत्वा हरिं भजन्ति। जो विशेष रूप से मुक्त हो चुके हैं, अब कोई कर्म ऐसा शेष नहीं बचा कि उनको द्वारा आना पड़े। लीलया स्वेच्छयैव विग्रहं कृत्वा, अपनी इच्छा से ही वे जन्म लेकर के भगवान के भजन में लग जाते हैं, कि वह दुर्लभ प्रेम हमें कैसे प्राप्त हो। तो ब्रजवासी प्रेम प्राप्त कर चुके हैं जो ज्ञान से श्रेष्ठ है, ऐसे प्रेमियों को मैं ज्ञान नहीं देता। उद्धव जी ने कहा कि प्रयत्न तो किया जाना चाहिए, उससे आपको भी आनंद है और उन्हें भी आनंद है, आपके भी दुख की निवृत्ति, उनके भी दुख की निवृत्ति। नया कोई पंडित होता है और पढ़ करके आता है तो उसके मन में एक भाव होता है कि हम कुछ अपना जो कुछ सुना है उसको हम कहें कहीं जाकर के। उद्धव जी बृहस्पति जी से पढ़ के आए हैं और बृहस्पति जी ब्रह्मनिष्ठों में भगवान की ध्यूति, ब्रह्मिष्ठांच बृहस्पति, ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति जो है भगवान की ध्यूति है। तब वहां से ब्रह्म विद्या लेके आए हैं तो उनको विचार हो रहा है कि कहीं कोई मिले इसका अधिकारी तो हम प्रवचन करें। अब भगवान से ब्रह्म विद्या क्या सुना मैं, भगवान को ही क्या सुना मैं। इसलिए उनका भाव बन रहा था कि ठाकुर जी हमसे कहें कि तुम चले जाओ, क्योंकि इस ब्रह्म विद्या के श्रवण का अधिकारी कौन है। श्रवण का अधिकारी वही है जिसको अहलौकिक पारलौकिक भोगों से सर्वथा वैराग्य हो गया हो, वही इस ब्रह्म विद्या के श्रवण का अधिकारी है। तो गोपियों से बड़ा, ब्रजवासियों से बड़ा वैराग्यवान कौन मिलेगा, जिन्हें न इस लोक में कहीं आसक्ति है और न परलोक की किसी वस्तु की चाह है, ऐसा विरक्त तो कोई मिलेगा नहीं। तो बार बार मन में आ रहा था कि हमारे ज्ञानोपदेश के लिए सर्वोत्तम मंच होगा ब्रजमंडल और सर्वोत्कृष्ट श्रोता होंगे ब्रजवासी गोप गोपीगण। हम वहां जाएंगे और बढ़िया वेदांत की चर्चा करेंगे, सबको पक्का वेदांती बना के आएंगे। फिर सब सोहमस्मी करने लग जाएंगे, किसी को कृष्ण की उतनी अपेक्षा नहीं रह जाएगी। वे ध्यान भी करेंगे तो अपने अंतरात्मा में ही त्रिभंग ललित झांकी को देख लिया करेंगे और यह उन्हें अनुभव हो जाएगा वे हमसे दूर नहीं है, हमारे अतिशय निकट है। ये भाव उनके मन में आ रहा था। ठाकुर जी ने उनके मन के भाव को समझ लिया। ठाकुर जी बोले, उद्धव जी हम तो उन प्रेमियों को ज्ञान नहीं दे सके और हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, वेदांत विषय हमारा बहुत कच्चा है। एक साल ही तो पढ़ाई किए हैं सांदीपनी महर्षि के यहां, एक वर्ष ही तो अध्ययन किया है, तो हमारा अध्ययन उतना बढ़िया नहीं है। आप तो बृहस्पति जी से पढ़ के आए हैं, धरती का कोई गुरु नहीं है आपका, तो देव गुरु बृहस्पति आपके गुरु हैं, वहां आप पढ़ के आए हैं और आप बड़े विनम्र और सरल भी हैं, आपकी शैली भी बड़ी सरल सरस और सुबोध है, तो आप अवश्य ही उन्हें ज्ञान दे सकते हैं। तो आप हमारा संदेश लेकर जाइए और उनसे मिलकर के उन्हें चर्चा सुना करके और मेरे स्वरूप का अनुभव कराइए। तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। प्रपन्नों की आरती को दुख को हरण करने वाले भगवान, उन्होंने उद्धव जी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके बड़े प्रेम से उद्धव जी को समझाते हुए कहा, गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। हे उद्धव, यहां उद्धव जी का संबोधन है सौम्य, उद्धव सौम्य दोनों संबोधन, हे सौम्य उद्धव तुम ब्रज में जाओ। अतिशय सौम्य स्वभाव वाले हो, सौम्य स्वभाव वाले जो होते हैं उनके व्यवहार का प्रभाव, उनकी सौम्यता का प्रभाव, उनकी सुशीलता का प्रभाव प्रायः सबके ऊपर हो जाया करता है। अतिशय कोई जड़ हो, समझता ही ना हो कुछ, तो भले ही उसके शील और सौम्यता का प्रभाव न हो, प्रायः सौम्य व्यक्ति का प्रभाव सबके ऊपर हो जाता है, सब उसकी सौम्यता से प्रभावित हो जाते हैं। तो आप बड़े सौम्य हैं, बड़े सरल हैं, आपका प्रभाव सबके ऊपर होगा, आपकी बात में वजन होगा। आप जाकर के नंद बाबा यशोदा मैया उन्हें प्रीतिम आवह, प्रीतिम आवह उनको प्रेम प्रदान कराओ, आनंद प्रदान कराओ, वे दुखी हो रहे हैं और मेरे विरह की व्याधि से गोपियों को तुम जाकर के मुक्त करो। गोपियों के प्रेम का वर्णन श्री ठाकुर जी स्वयं अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। गोपियों का प्रेम कैसा प्रेम है, बड़े सूत्र रूप में प्रेम का वर्णन किया है, लेकिन अद्भुत वर्णन भगवान ने किया है। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठं आत्मानं मनसागता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्म्यहम्। हे उद्धव जी, ता मन मनस्का, वे गोपियां उनका मन भी मैं ही हूं, अर्थात उनका मन उनके पास नहीं है, उनका मन भी मेरे मन में मिल चुका है। ता मन मनस्का, अथवा मैं ही उनका मन बन चुका हूं, उनका मन मन नहीं है, मैं ही उनका मन हूं और मैं यहां विराज रहा हूं मथुरापुरी में। अर्थात मन उनके पास नहीं है, क्योंकि उनका मन तो मैं ही था, मैं यहां आ गया, उनका मन उनके पास नहीं है। ये वर्णन भी कर रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं कि बिना मन के कोई बात कही सुनी जा सकती है क्या? मन जिस इंद्रिय के साथ होगा वह इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करेगी, मन नहीं होगा तो इंद्रिय रहते हुए विषय का ग्रहण नहीं करेगी। कान के साथ मन नहीं है तो चाहे जितनी बढ़िया कोई कथा कहे, पढ़ावे, उपदेश करे, कान के साथ मन नहीं होगा तो शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा, शब्द श्रवण नहीं होगा। मन की महिमा है और मन उनके पास है नहीं। उधो मन न भये दस बीस एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईश। उधो मन न भये दस बीस, उनका मन भी उनके पास नहीं है, मन भी हमारे पास है। चलो ठीक है, मन उनके पास नहीं है, मन आपके पास है, और क्या है? कहते मत प्राणा, उनके प्राण भी उनके निकट नहीं है, उनके प्राण भी मेरे ही निकट है, उनका प्राण भी मैं ही हूं, उनका मन भी मैं ही हूं और उनका प्राण भी मैं ही हूं। कहां तक कहा जाए? मदर्थे त्यक्त दैहिका, उन्होंने मेरे प्रेम में विह्वल होकर के दैहिक को त्याग दिया है। दैहिक माने देह से संबद्ध संसार, स्त्री पुत्र आदि सब दैहिक ही हैं, तो समस्त लोक का त्याग कर दिया है। शरीर देह और गेह, शरीर और संसार, इन दोनों का वे सर्वथा त्याग कर चुकी हैं, दोनों से ऊपर उठ चुकी हैं, और मैं ही उनका प्राण प्रियतम हूं ऐसा मान करके उनका मन बुद्धि चित्त प्राण सब कुछ मुझ में लगे भये हैं। तब प्रश्न उठा कि भाई बिना मन के तो हो सकता है कोई रह भी ले? बिना प्राण के जीवन संभव है क्या? बिना प्राण के तो जीवन संभव नहीं। इंद्रियों में विवाद हो गया, कौन बड़ा है, हम में कौन बड़ा है, एक एक करके सब घूम घूम के चली आई, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा शरीर का। लेकिन जैसे ही प्राण बोला कि अब हम चलते हैं, तो जैसे ही वो उठने लगा तो वे सब इंद्रियां कहने लगी त्वन्न श्रेष्ठः त्वन्न श्रेष्ठः, हम सब में आप ही श्रेष्ठ हैं, प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है। प्राण निकट आ गया, भगवान कहते उनके प्राण भी मुझ में लगे हुए हैं। तब उनका जीवन कैसे चल रहा है? कहते लोक धर्म का भी त्याग हो गया, ये सब कुछ होने के बाद जीवन संभव नहीं है, मन नहीं है, प्राण नहीं है, दैहिक व्यवहार छूट चुका है, लोक धर्म का भी त्याग हो चुका है, फिर उनके जीवन का संचालन कैसे हो रहा है? तो ठाकुर जी उत्तर दे रहे हैं, तान विभर्म्य हम, विभर्मी ये क्रिया है और अहम ये कर्ता पद है, अहमेव तान विभर्मी, मैं ही उनका भरण पोषण कर रहा हूं। इसका तात्पर्य कि गोपियों की कोई क्रिया उनके द्वारा नहीं हो रही है, मेरे संकल्प से ही गोपियों की समस्त क्रियाएं संचालित हो रही है। तान विभर्म्य हम का तात्पर्य क्या है? तान विभर्म्य हम का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी चले गए हैं, गोपी विरह से अत्यंत व्याकुल है, सैया पर पड़ी है, विरह से शरीर कप रहा है, निद्रा नेत्रों में नहीं है, सैया भीज चुकी है आंसुओं से, कंचकी पट भीज चुका है नेत्र के जल से, और वह अतिशय व्याकुल होकर अब प्राण का त्याग ही करना चाहती है, तब तक उसे क्या अनुभव होता है कि ठाकुर जी हमारी शैया पर बैठे हैं, मस्तक पर शीतल वरदहस्त पधराकर कहते हैं, अरे तू क्यों रो रही है? कहा आप मथुरा चले गए थे। किसने कहा मथुरा चले गए थे? तुम्हें छोड़ के हम कहीं जा सकते हैं? हम तो तुम्हारे निकट हैं। तो हे प्राण प्रियतम, इस रात्रि में कैसे पधारे? बोले कहा बताऊं, बड़ी जोर की भूख लगी है, कचू बनाए के खवाए गए। अब देखो खुद उसने खाने को उसके नहीं है कुछ भी, लेकिन भगवान उसको अनुभव कराते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो अब ये श्याम सुंदर आए हैं, इन्हें तो कुछ खिलाना ही है। ठाकुर जी कहते पे तू खा तब मैं खाऊंगा। तो भोजन भी उनके संकल्प से, शयन भी उनके संकल्प से, प्रातःकाल उठना भी उनके द्वारा, यहां तक कि खाने पीने सोने की समस्त क्रियाएं शरीर के संबंध की, भगवान कहते तान अहमेव विभर्मी, मैं ही उनका भरण पोषण कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही उनकी समस्त क्रियाओं का संपादन हो रहा है। ऐसी स्थिति में कोई जी नहीं सकता, ऐसा उच्च कोटि का प्रेम उन्हें प्राप्त है। हे उद्धव मैता प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुल स्त्रिय स्मरंत्योंग विमुहियंती विरह उत्कंठ विह्वला। वह मुझे दूरस्थ मानती हैं और मेरा स्मरण करके अतिशय मोहित हो रही हैं। वे मेरे लिए प्रतिक्षण विह्वल होकर के उत्कंठित रहती हैं, मेरे दर्शन के लिए व्याकुल रहती हैं। प्रतिपल गोपियों के चित्त में यह भाव होता है कि वे कह के गए हैं अब आएंगे। गिरिराज जी के निकट एक गांव है, दो गांव है, एक का नाम है सी, एक का नाम है परसों, दोनों को मिलाकर सी परसों गांव है, सी परसों। ठाकुर जी जा रहे थे तो ब्रजवासियों ने पूछा कब आएंगे, बोले श्वः, और बोले ज्यादा समय कुछ अड़चन आ गई तो परश्वः, या तो कल आ जाएंगे नहीं तो परसों आ जाएंगे। तो श्वः परश्वः भगवान ने वहां के लोगों से कहा तो गांव का नाम ही पड़ेगा सी परसों, श्वः परश्वः का अपभ्रंश है सी परसों, या तो कल आएंगे या परसों आएंगे। तो प्रत्येक गोपी इसलिए अपने घर को अलंकृत कर रही है, प्रत्येक गोपी इसलिए व्यंजन बना रही है, उसे पता है कि कल की कह के गए कल आने वाले हैं, तो आगामी कल के लिए सारी तैयारी करती है, पुष्पमाला बनाती है, चंदन तैयार करती है और सुंदर व्यंजन बनाती है। फिर कल नहीं आए तो चलो परसों आएंगे। तो नित्य निरतिशय रूप से वे मेरे आतुर प्रतीक्षारत रहती हैं, आतुर भाव से मेरी प्रतीक्षा करती रहती हैं। हे उद्धव मैं क्या क्या कहूं तुमसे, धारयन्त्यतिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्चन प्रत्यागमन संदेशैर् वल्लभ्यो मे मदात्मिका। इतना प्रेम पूर्ण संबोधन और क्या हो सकता है? ठाकुर जी कह रहे मत आत्मिका, वे मेरे प्राण हैं, गोपियां मेरी आत्मा हैं। हे उद्धव वह मेरी आत्माएं मेरे संकल्प से ही उनके शरीर में प्राण टिके हुए हैं, वे जीवित भी केवल मेरे संकल्प से हैं और उनके हृदय में केवल एकमात्र अभिलाषा है। वे प्रियतम कह के गए हैं तो आएंगे अवश्य, वे आगमन के संदेश के श्रवण की अभिलाषा में ही उनके प्राण टिके हुए हैं, इसलिए तुम जाकर के उनको कहो। यह आगमन संदेश ही इसका तात्पर्य है कि तुम भूल से भी यह मत कह देना कि वे नहीं आएंगे, आगमन का संदेश ही सुनाना, क्योंकि वे प्राण इसी कारण से टिके हुए हैं। यदि तुमने भूल से भी कह दिया कि वे तो तुम्हारे निकट हैं अब वे नहीं आएंगे, ये तुमने भूल से भी कह दिया तो वे सब निष्प्राण हो जाएंगे। ये इसका इसमें से एक भावक ध्वनि ये निकल रही है। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ, गोपियों के इस प्रेम का श्रवण करके उद्धव जी भी आश्चर्य में पड़ गए और उद्धव जी की भी व्याकुलता बढ़ गई कि भगवान कह रहे हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा कह रहे हैं, तो असत्य तो कहते नहीं, सत्य ही कह रहे हैं, तो चलकर देखें तो सही, ऐसा भी प्रेम हो सकता है क्या? श्री उद्धव जी निम्लोचत विभावसौ, सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे उस समय आप पधारे हैं। जैसे ही आए हैं ब्रज को उन्होंने देखा है श्री नंद महल की ओर चले हैं। हमारे ब्रज में एक प्रसिद्धि है, कहते कि उद्धव जी जब आए तो वहां उन्होंने देखा ब्रजवासियों को, सब अतिशय उदासीन भाव से अपने कार्य क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। गायों का दोहन हो रहा है, धूप दिखाई जा रही है घरों में, वो केवल इसलिए कि हो सकता है अब अभी श्याम सुंदर आ जाए। आगमन की प्रतीक्षा में ही जो कुछ हो रहा है सो हो रहा है, अपने लिए कहीं कोई क्रिया नहीं हो रही। उद्धव जी तो पहली बार पधारे हैं, इसलिए उद्धव जी ने ब्रजवासी बालकों को बुलाकर पूछा, भैया हम तो पहली बार या नंदगांव में आए हैं, तो श्री नंदराय जी को महल कौन सा है आप कृपा करके बताओ। ये बालक बोले कि नंदराय जी को महल जानवे में कोई बड़ा श्रम नहीं करना पड़ेगा। बोले तुम एक हमारे साथ चलो। बोले हमको साथ जाने का अवकाश भी नहीं है और साहस भी नहीं, आप चले जाएं। ये जो सामने नाली बह रही है ना, इस नाली के सहारे 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 चले जाएं, और जहां से ये जल का पनारा बह रहा है वही नंद महल है। उद्धव जी ने पूछा क्या वहां कोई झरना है या कोई स्रोत है जिससे ये जल की धारा निरंतर चलती रहती है। उस बालक ने रोते हुए कहा वहां कोई जल का स्रोत नहीं है, वहां ऐसा अक्षय श्री कृष्ण विरह का स्रोत है कि निरंतर नंद महल में रुदन ही होता रहता है, उस रुदन की धारा पनारे में बहती रहती है। श्री परमानंद दास जी ने अपनी वाणी में इसको कहा है, ब्रज के विरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाणे, अति दुर्बल तन कारे, विरही लोग बिचारे, जो को कान कान कही बोलत, जो को कान कान कही बोलत, असुवन बहत पनारे, ब्रज के विरही लोग विचारे। आंसुओं के पनाले उनके नेत्रों से बहते रहते हैं। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ, इतना भी अश्रुपात हो सकता है क्या कि जल बहता रहे, और पहुंच करके उन्हें इसका सत्य ही अनुभव हुआ। प्रेम एक विलक्षण तत्व है, यह प्रेम देवता जिसके भीतर प्रकट हो जाता है उसका सब कुछ अनिर्वचनीय हो जाता है। कल निवेदन किया था श्री निषादराज गुह के संबंध में, निषादराज गुह भगवान के वियोग में इतने व्याकुल भय हैं। प्रियादास जी लिखते हैं, पाछे बहे लहू धार है, अश्रुधार बहना बंद हो गई, नेत्र फूट गए रोते रोते, और रक्त की धारा नेत्रों से बहने लगी। अद्भुत प्रेम, बात बहुत पुरानी नहीं है, आज से 30-35 वर्ष हो गए होंगे। एक संत हुए सौराष्ट्र में, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, बड़े भारी नामनिष्ठ संत थे। हमने उनका दर्शन तो नहीं किया है, किंतु उनके जो साधक गण हैं उनसे श्रवण किया है। आज भी 7-8 जगह अखंड संकीर्तन श्री राम जय राम जय राम का हो रहा है। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु का उन्हें दर्शन हुआ था। पूरी जब वे पधारे तो साक्षात महाप्रभु जी ने उन्हें दर्शन दिया, साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त किया। 18 करोड़ मंत्र का लेखन, 13 करोड़ मंत्र का जप उनके माध्यम से। बड़े अच्छे महापुरुष थे। जीवन में 2 बहिर्वास और 2 उत्तरीय और 2 कौपीन, इसके अतिरिक्त उन्होंने किसी वस्तु का संग्रह नहीं। कंचन और कामनी से सर्वथा मुक्त रहे, एक झोपड़ी नहीं डाली, एक शिष्य नहीं बनाया, एक कूटी कौड़ी नहीं छुई। बड़े उच्च कोटि के संत थे प्रेम छुई। तो वे जब नाम संकीर्तन करने लग जाते, उनके भाव चित्र भी हैं, जब वे नाम संकीर्तन करने लग जाते तो जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं वे बताते कि नेत्र उलट जाते, और जब वे हुंकार करते, कीर्तन में नृत्य करते, तो ऐसे लगता माने कई तो बड़े बड़े डॉक्टर विस्मित थे कि इतने आंसू किसी मनुष्य के निकल नहीं सकते। इतने आंसू, ऐसे लगता किसी ने भीतर नल खोल दिया हो, आंखों के भीतर किसी ने नल खोल दिया हो, ऐसे झर 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 झर, जहां नृत्य करते वहां की भूमि गीली हो जाती, इतना श्वेद होता कि वस्त्र निचोड़ दो तो बाल्टी भर जाए, कितना श्वेद होता। जगन द्वारिका में उन्होंने नाम संकीर्तन की स्थापना की, अखंड श्री राम जय राम जय जय राम की। वल्लभ कुल का वहां विशेष प्रभाव द्वारिका में है, गुजरात में पूरे में है। तो बहुत से लोगों ने जो अपने को बहुत कट्टर मानते थे, अनन्य मार्गी मानते थे, उन लोगों ने विरोध किया, बोले नहीं, यहां श्री राम जय राम जय जय राम द्वारिका में नहीं होगा। लोगों ने कहा महाराज आपके कीर्तन मंदिर का यहां विरोध हो रहा है, कीर्तन यहां नहीं होगा। बड़े सरल थे, बोले भाई ठाकुर जी के सामने तो एक बार कीर्तन कर सकते हैं। बोले नहीं, वहां दर्शन हो तो पीछे मंदिर के करें कीर्तन। थोड़ी देर का कीर्तन हुआ, कीर्तन में जब उन्हें भावावेश हुआ, हुंकार करने लगे भावावेश में, उद्दाम नृत्य करते, तो उस समय जब रोमांच उनके हुआ तो ये जो सिर के केस है ना, सीधे खड़े हो गए, सीधे खड़े हो गए। उस भाव दशा को जिन लोगों ने देखा, वल्लभ कुल के कोई गोस्वामी गण भी पधारे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु। और इसके बाद उन लोगों ने ही वहां कीर्तन की स्थापना। आज भी शयन आरती के समय जगन्नाथ श्री द्वारिकाधीश भगवान 15-20 मिनट कीर्तन सुनते हैं, तब शयन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तुतः प्रेम एक विलक्षण वस्तु। उनके गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा थे, श्री राधा रानी के अनन्य भक्त। तो लोग बताते हैं कि 5 से 7 मिनट तक राधा नाम संकीर्तन करने के बाद ऐसा प्रेमावेश होता था, रोम कूपों से भी रक्त के कण निकलने लग जाते थे, रोम कूपों से खून झरने लग जाता था, पसीना के साथ खून आने लग जाता था, इतना अद्भुत प्रेम उनके भीतर। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का जो प्रेम है उसकी बात प्राकृत मन बुद्धि के द्वारा नहीं समझी जा सकती। ये तो प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो चुका है वह उसका जाने अनुभव करे। क्षणिक प्रेम का भाव जग गया ये भी कम सौभाग्य की बात नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन वस्तुतः प्रेम वो है कि प्रेम का नशा चढ़ता है, उतरता नहीं है। प्रेम जो है वो निरंतर वर्धमान है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में प्रेम को निरंतर वर्धमान कहा, प्रतिक्षण वर्धमान, प्रतिक्षण वर्धमान ही प्रेम का स्वरूप है। तो जो प्रतिक्षण बढ़े उसी को प्रेम कहते, घटे नहीं। वहां पहुंचे हैं नंदा प्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत, साक्षात श्री कृष्ण आ गए ऐसा मान करके श्री नंद बाबा ने उन्हें हृदय से लगाया और उत्तम भोजन कराया। गतश्रमम पर्यप्रच्छत पाद संवाहनादि भी, भोजन करा के शयन पर्यंक पर पौढ़ा करके पाद संवाहनादि भी, इसका तात्पर्य सेवकों से ये भी कहा कि उद्धव जी आए हैं तो इनकी चरण सेवा भी करो, पाद संवाहन करवा करके उनकी पीड़ा को दूर किया। इसके बाद सब लोग इकट्ठे हो गए, बैठ गए हैं, उद्धव जी भी पर्यंक पर बैठे हैं, श्री नंद बाबा भी पर्यंक पर बैठे हैं। उस समय चर्चा छिड़ गई। बाबा ने कहा हमारे मित्र वसुदेव जी अब तो ठीक हैं, अब तो कंस भी मारा गया, उनका पूरा परिवार भी एक जगह इकट्ठा हो गया, ठीक है कंस तो अपने पाप से ही मारा गया, संतों से धर्मात्माओं से वह द्वेष करता था। बस इतनी ही बात बाबा ने व्यवहार की थी। अब आगे श्री कृष्ण का स्मरण होते ही वे इतने व्याकुल हो गए कि उनका कंठ गदगद हो गया। अपिस्मरति न कृष्णो मातरम सुहृद सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। हे उद्धव तुम एक बात बताओ, क्या श्री कृष्ण कभी अपनी मैया यशोदा की याद करता है कि नहीं? ब्रज की याद करते हैं कि नहीं। आत्मनाथम, आत्मनाथम ये विशेषण सबका है। इसका तात्पर्य है कि गोपियों का भी आत्मनाथ श्याम सुंदर है, हमारे और यशोदा के आत्मनाथ भी श्याम सुंदर हैं, और गायों को भी आत्मनाथ प्राणों के स्वामी श्री कृष्ण ही सबके प्राणों से अधिक प्रिय हैं। क्या कभी मैया यशोदा की याद करते हैं कि नहीं, ब्रजवासियों की याद करते हैं कि नहीं, गोपों की याद करते हैं कि नहीं, गायों की याद करते हैं कि नहीं, और श्री वृंदावन की याद करते हैं कि नहीं, लता कुंजों की याद करते हैं कि नहीं, गिरिम श्री गोवर्धन गिरिम श्री गोवर्धन की याद करते हैं कि नहीं, बृहत सानु बरसाने की याद करते हैं कि नहीं, रुद्राचल नंदग्राम का जो पर्वत है उसकी याद करते हैं कि नहीं, ब्रजमंडल के पर्वतों की याद करते हैं कि नहीं, बताओ। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रजवासी बहुत उच्च कोटि के निष्काम प्रेमी हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसके बाद भी प्रेमी के चित्त में एक अपेक्षा अवश्य अपने प्रेमास्पद के प्रति होती है। वह अपेक्षा यह है कि वे हमारी याद करते हैं, जिनकी याद में हम दिन रात व्याकुल रहते हैं, वे कभी हमारी याद करते हैं कि नहीं। यदि एक बार भी सुन ले वह कि हाँ वे कभी कभी तुम्हारी भी याद कर लेते हैं, बस इतना सुन के ही प्रेमी कृतार्थ हो जाता, कहता चलो हमारी याद तो करते हैं, हमारा स्मरण तो करते हैं, इतने से ही उसे कृतकृत्यता का अनुभव होने लग जाता है। तो ये हमारी याद करते हैं कि नहीं एक बार बताओ। हे उद्धव जी, हम सत्य कह रहे हैं। अप्यायास्यति गोविंदा स्वजनान सकृदीक्षितुम तरी द्रक्ष्याम तद वक्त्रम सुनसम सस्मिते क्षणम तरी द्रक्ष्याम तद वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम। हे उद्धव जी, एक बार केवल इतना बता दो, इन अपने स्वजनों को, अपने आत्मीय जनों को क्या एक बार देखने के लिए आवेंगे कि नहीं, इन विरही ब्रजवासियों की दुर्दशा देखने के लिए एक बार श्री कृष्ण आवेगो के नहीं। तुम एक ही बात बता दो, क्या कबू हमारो ऐसा सौभाग्य होएगो कि वो कन्हैया यहाँ आवेगो, हमारे विरह को प्रेम को देख करके व्याकुल होके आवेगो, और जब वो आवेगो तो तरही द्रक्ष्याम तद वक्त्रम, उनके मुख कमल का हमें दर्शन होगा। कैसा मुख कमल है, सुनशम सुंदर नाशिका, और सस्मिते क्षणम, बड़ी प्यार भरी जिनकी चितवन है। बात्सल्य रस के उपासक और माधुर्य रस के उपासक, उनके चित्त में मुखमंडल ही बसा रहता है। दास रस के उपासकों के हृदय में विशेष रूप से चरण कमल। बाबा तो बात्सल्य की मूर्ति है, तो वे बार बार कहते वह मुस्कुराता हुआ मुख कमल, सुंदर नासिका, सुंदर दो दतली, ऐसा मुख कमल क्या देखने के लिए हमें मिलेगा कि नहीं। हे उद्धव, तुम सत्य सत्य कहो, यदि तुम एक बार भी यह कह दो कि वे अब नहीं आएंगे, उनका मुख कमल अब द्वारा देखने को नहीं मिलेगा, तो हे उद्धव मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, ब्रज की चींटी भी जीवित नहीं रहेगी, सब देह का विसर्जन कर देंगे। देह में प्राण केवल एक ही आशा में अटके हुए हैं कि एक बार उनका दर्शन हो जाए। हे उद्धव, तुम ही बताओ, तुम तो उनके सखा हो, क्या दावाग्नि से, इंद्र के क्रोध से, वर्षा से, अरिष्टासुर से, अघासुर से, बड़े बड़े भयंकर असुरों से, क्या आज का दुर्दिन दिखाने के लिए ही रक्षा की थी क्या? यदि ऐसे ही विरह में तड़पा कर मारना था तो उस समय बचाया क्यों श्री कृष्ण ने? हे उद्धव, मैं कहां तक कहूं, स्मरताम कृष्ण वीर्याणी लीला पांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांगा सर्वान शिथिला क्रिया। हे उद्धव, श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से उनके चंचल चपल चितवन, चलन चाल ढाल चितवन, मनोहर झांकी का स्मरण करके इनकी मंद मदमाती हंसी और उनकी मीठी वाणी का स्मरण करके हे उद्धव, हमारा तो हृदय इतना प्रेम से विवल हो जाता है कि मैं तो अतिशय शिथिल हो चुका हूं। एक तो वृद्धावस्था के कारण शिथिलता है और फिर दूसरे श्री कृष्ण के विरह ने हमें अतिशय जर्जर और शिथिल बना दिया है। हे उद्धव, तुम ही बताओ, मैं तो जैसे तैसे अपने हृदय को समझा लेता हूं, यहां मन नहीं मानता तो रोते रोते अथाई पर जाकर बैठ जाता हूं, बड़े बूढ़ों के बीच बैठकर अपना समय काट लेता हूं, लेकिन तुम तो बड़े ज्ञानी हो, हमने सुना तुम बृहस्पति जी के शिष्य हो, तुम बताओ मैं यशोदा को किन शब्दों से समझाऊं, कौन सा ज्ञान ध्यान यशोदा को बताऊं जिससे यशोदा के हृदय में संतोष हो जाए। यह तो इतनी व्याकुल रहती है कि उद्धव देख लो तुम अपनी आंखों से, यशोदा रोते रोते नेत्रहीन हो चुकी है, अब आंखों से सूझता भी नहीं है, नेत्र भी धुंधले हो गए, ज्योति भी धुंधली हो चुकी है। भोर होते ही इसे भूल जाता है श्री कृष्ण कहीं गए हैं। भोर में प्रभाती गा करके जैसे ही शयन कुंज में प्रवेश करती है, सैया को सूनी देख करके पछाड़ खा करके गिर जाती है। उस कटी हुई कदली की भांति यशोदा को मैं उठाता हूं, बहुत यत्न पूर्वक तब वह होश में आती है और फिर इसका रोना चालू होता तो बंद नहीं होता। रोते रोते मूर्छा में कब ये सो गई, कब कितनी देर तक मूर्छित बनी रही, बस जितनी देर तक मूर्छा है मानो मूर्छा है अथवा विश्राम है, विश्राम और मूर्छा अब दो नहीं रह गए। मूर्छा में ही जो विश्राम मिलता है वो विश्राम मिलता है। सायंकाल को जब गायें चलकर के आती हैं तो उस समय यह यशोदा आरती का थाल सजा करके द्वार पर खड़ी हो जाती है, एक एक करके गोपों को गायों को देखती हैं। अब पीछे से कन्हैया आते होंगे, अब आते होंगे, अब आते होंगे। जब सब गायें निकल जाती हैं, ग्वाल बाल भी रोते रोते नेत्रों को नीचा करके निकल जाते हैं, बस थाल पटक करके यशोदा मूर्छित होकर के गिर जाती है। कन्हैया तू अब ही ना आयो, कहां चलोगे, अब बताओ मैं यशोदा को कैसे धैर्य बंधाऊं। हे उद्धव जी, गर्ग जी ने जो कुछ कहा था वह सर्वथा सत्य हुआ, वस्तुतः वह तो कोई सामान्य बालक नहीं, वह तो साक्षात परम पुरुष ही थे। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कंठो भवत् तूष्णीम् प्रेम संरम्भ विहुवलः। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का एक एक करके वह स्मरण करने लगे, प्रेम की बाढ़ आ गई उनके हृदय में, इतने प्रेम से विह्वल हो गए कि अत्युत कंठो भवत् तूष्णीम्, एक शब्द भी उनके कंठ से अब निकल नहीं सका, वे अतिशय प्रेम में व्याकुल होकर के अश्रुधारा उनके नेत्रों से चलने लगी, वे एक शब्द भी आगे नहीं कह सके। यहां नंद बाबा के प्रेम का वर्णन है, यशोदा जी के प्रेम का वर्णन नहीं है इस प्रकरण में, क्यों नहीं है? केवल एक श्लोक में यशोदा जी की बात कही है सुखदेव जी, एक श्लोक में यशोदा के प्रेम का स्वतंत्र वर्णन क्यों नहीं? इसलिए वर्णन नहीं कि जब बाबा की ये दशा है तो यशोदा की दशा का कौन वर्णन करे, जब नंदराय जी के हृदय की ये दशा है तो यशोदा तो यशोदा ही। माता के हृदय में अपने पुत्र के प्रति कितना प्रेम होता है इसको कोई वर्णन कर सकता है क्या? कबीर जी महाराज तो कहते हैं, कर गई केस करे जो घाता तऊ न हेत उतारे माता। माता के हृदय में पुत्र के प्रति इतना प्रेम होता कि कर गई केस करे जो घाता, चूटी पकड़ के मैया का मस्तक तक काट ले पुत्र, तो भी माता हृदय से पुत्र को शाप नहीं देती, फिर भी पुत्र के हित का ही चिंतन करती है। जहां सामान्य संसार की माताओं के हृदय में ऐसी प्रीति होती है फिर साक्षात वात्सल्य गुण के समुद्र भगवान को वात्सल्य देने वाली माता, जिसकी गोद में स्वयं भगवान ही बालक बनकर खेल रहे हो, उस माता के हृदय में कितना प्रेम होगा, इसको वर्णन करने में शेष शारदा भी समर्थ नहीं है। ऐसा प्रेम यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वत्यश्रूण्यवा श्राक्षी स्नेह स्नुतपयोधरा। बालकृष्ण के चरित्र सुनकर के यशोदा जी के नेत्रों से तो आंसुओं की धार बहने लगी। वे एक शब्द भी नहीं बोल सकी, वे इतनी व्याकुल हो गई कि व्याकुलता में उनके प्राण निकलना ही चाहते थे। तब तक उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी अंक में ही बालकृष्ण पौढ़े हुए। श्रण्वत्याश्चश्रूण्यवास श्राक्षी स्नेह स्नुत पयोधरा। स्नुत पयोधरा जो विशेषण है ये यह बताता है कि यशोदा के पयोधरों में दुग्ध श्राव तब होता है जब बालकृष्ण उनकी अंक में होते हैं या बालकृष्ण दिखाई पड़ते हैं। तो स्नेह स्नुत पयोधरा का भाव संत लोग देते हैं कि जब जब यशोदा प्रेम में इतनी व्याकुल होती कि अब मरणासन्न होने वाली है, तब तक उन्हें अनुभव होता है कि मेरी गोद में लाला आकर के आंचल में मुख ढक के दूध पी रहे हैं, और इस भाव में यशोदा मगन हो जाती है, पयोधरों से दुग्ध का श्राव होने लग जाता है। अब ये तो नंद बाबा और यशोदा मैया की बात हुई। अब नंद महल के एक एक गोपी ग्वाल बाल सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उद्धव जी हमारे साथ तो ऐसी लीला भई, हमारे साथ तो ऐसी लीला भई। उद्धव जी ज्ञानी है, निर्मम है, ममता शून्य है, ममता नहीं है उनके भी, निर्माण मोह है। उद्धव जी अब तक रोए नहीं थे क्योंकि ज्ञाने ना समेत क्षत्ता, ज्ञान के द्वारा सबका उपशमन कर लेते थे, लेकिन आज इन सबके बीच बैठे बैठे उद्धव जी के भी नेत्रों से कब जलधारा बहने लगी उनको पता ही नहीं चला, उनके नेत्र से भी अश्रुधारा बहने लगी। सब लोग रो रहे हैं, उद्धव जी भी अपने हृदय को धैर्य नहीं बधा सके, उनके भी नेत्रों से जल बहने लग गया। सोच के तो आए थे कि हम उपदेश देंगे कि तुम किसके लिए रोते हो, वो दूर तुमसे नहीं है, तुम उससे दूर नहीं हो, और यहां तक कि कह देंगे कि तुम तो तदरूप ही हो, अन्य किसी के लिए वियोग होता है, अन्य है ही नहीं, तुम तदरूप ही हो, ऐसा हम कह देंगे, उस तत्व में ही उनको स्थित कर देंगे। लेकिन उद्धव जी को साहस नहीं हुआ। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, उद्धव जी की बड़ी विलक्षण वाणी है। अब तक तो उद्धव जी यह समझते थे कि जो ज्ञानवान है वही श्रेष्ठ है, लेकिन आज उद्धव जी को समझ में आ गया प्रेम ही श्रेष्ठ है और प्रेमी ही श्रेष्ठ हैं। उद्धव जी खुद कह रहे हैं, युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहिनामिह मानद नारायणे खिल गुरौ यत्रता मतिरीद्रसी। हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, इस ब्रह्मांड में जितने शरीरधारी हैं, देही नाम जितने शरीरवान हैं, शरीरधारी हैं, उन समस्त शरीरधारियों में हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, आपसे श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि अब तक तो सोच रहे थे कि हम ज्ञानवान हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन आज कह रहे हैं कि जितने शरीरधारी हैं, देही नाम जितने शरीरधारी हैं, उन सब में आप दोनों श्रेष्ठ हैं। क्योंकि जो संपूर्ण जीवों का आश्रय नारायण श्री कृष्ण हैं, सबके गुरु हैं, ऐसे भगवान में इस प्रकार की प्रीति हो गई, इस प्रकार से तुम्हारी बुद्धि उनमें लग गई। वस्तुतः आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं। कहने तो गए थे कि वे अब नहीं आएंगे, उनको निकट ही अनुभव करो, लेकिन आश्चर्य है, भगवान ने ये नहीं कहा था उनसे कि तुम जाके कह देना कि हम आवेंगे, केवल ये कहा कि मेरा संदेश सुना देना और उनके दुख को दूर कर देना। उद्धव जी कह रहे हैं, आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन ब्रजमच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रोर् भगवान सात्वताम पति। हे बाबा, आप अधीर मत हो, आप धैर्य धारण करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वे अदीर्घेण कालेन ब्रजम अच्युतः आगमिष्यति, वे शीघ्रातिशीघ्र ही ब्रज में आवेंगे। और यहां तक कि यदि नहीं आवेंगे, यदि कोई कार्य ऐसा हो भी गया, तो हम जाएंगे, हम हाथ पकड़ के ले आएंगे। इतने प्रेमियों को छोड़कर आप यहां मथुरा में क्या कर रहे हो? इसलिए आप रोना गाना बंद करें, और वे आकर के आपको प्रसन्न करेंगे। आपके साथ जैसे पहले क्रीड़ा करते थे, वैसे ही क्रीड़ा करेंगे। क्योंकि उद्धव जी इस बात को समझ गए, कहीं ऐसा न हो कि धोखे से मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाए, ये सब निष्प्राण हो जाएंगे, तो फिर हम भगवान को मुख दिखाने क्या जाएंगे। अच्छे उपदेशक बन के गए, जिनको उपदेश देना चाहते थे, अभी उपदेश की भूमिका का भी शुभारंभ नहीं हुआ, और वो बेचारे जिज्ञासु ही भगवत धाम चले गए। अच्छा उपदेश देने आप गए, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वे आवेंगे और वे तुम्हें पुनः अपने प्रेम को प्रदान करेंगे, वे अपने कथन को सत्य करेंगे। फिर कुछ तत्व का भी निरूपण किया है, तुम लोग खेद मत करो, वे संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी हैं। अंतर हृदय भूतानाम आस्ते ज्योतिर्वैधसी, वे जैसे ऐधसी माने काष्ठे, जैसे काष्ठ में अग्नि विद्यमान होती है, ऐसी वह परमात्मा संपूर्ण प्राणियों में विद्यमान है। न उनका कोई प्रिय है, न अप्रिय है, न उत्तम है, न अधम है, न समान है, न असमान है, न उनका कोई माता है, न पिता है, न भार्या है, न पुत्र है, न अपना है, न पराया है, न उनका देह है, न उनका जन्म है, न उनका कोई कर्म है। उनकी जो कुछ क्रियाएं हैं, वे सब प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए हैं। वे सत्य भी नियामक और असत्य भी वे ही नियामक हैं। संतों के परित्राण के लिए ही वे अपने इस मंगलमय स्वरूप को धारण करते हैं। इस प्रकार से कुछ ज्ञान का भी वर्णन किया, लेकिन वे तो अपने प्रेम में ऐसे डूबे हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में, कि उद्धव जी क्या कह रहे हैं ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही। बस इतनी बात को सुनकर वे प्रेम में डूब गए कि वे आएंगे, बस इसी में मगन हो गए। उद्धव जी क्या कह रहे हैं उनको समझे में नहीं आ रहा है। उद्धव जी सोचते थे कि एक आध घंटे में प्रवचन हो जाएगा, फिर विश्राम करेंगे। यहां तो पूरी रात बीत गई, क्योंकि बाबा मैया और गोपी ग्वाल बाल सबने वर्णन किया है लीलाओं का, और पूरी रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। भोर वेला आ गई, बाबा उठ के यमुना स्नान के लिए चले गए, उद्धव जी भी जाने लगे। उद्धव जी ने बाबा के महल के जो सेवक हैं उनसे पूछा कि आज हम आए इसलिए यह सभा हुई, इसलिए पूरी रात लोग जगते रहे, कि और भी कभी ऐसा हो जाता है? उस सेवक ने रोते हुए कहा कि उद्धव जी, नंद महल की तो नित्य की यही दशा है, जैसे ही बाबा लौट के आते हैं, सब जैसे ही शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर बैठते हैं, तो बस श्री कृष्ण की चर्चा जब छिड़ती है तो सवेरा हो जाता है, नित्य की यही दशा है। उद्धव जी यमुना स्नान करके लौट के आ रहे हैं, बड़ी सुंदर शोभा है श्री उद्धव जी की। नंद महल के द्वार पर गोपियों ने रथ खड़ा देखा, स्वर्ण में रथ को देख करके वे सब विचार करने लगी। दृष्ट्वा रथम सात कौंभम कश्यायमिति चाप ब्रुवन, यह रथ किसका है? वे परस्पर कहने लग गई। एक गोपी बोली, यह अभागा वही रथ है जिस रथ में बैठ करके कृष्ण बलदेव मथुरा गए थे, वही ये रथ आ गया। तो एक बार तो इस रथ में बैठ करके हमारे प्राण जीवन धन हमें छोड़कर चले गए, अब द्वारा यह रथ क्यों आया है? पहले अक्रूर लेके रथ आया था, लगता है अभी भी वही रथ है और अक्रूर ही इसे लेकर के आया होगा, तो अक्रूर अब क्यों आया है? यह अक्रूर इसका नाम व्यर्थ है, क्रूरस्त्वम अक्रूर समाख्ययास्मनः चक्षुरि दत्तम हरसे बताग्यवत् ये नैक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम त्वदीय मद्राक्ष्म वयम् मधिद्विषः। इसका नाम अक्रूर किस मूर्ख ने रखा, ये तो महाक्रूर है, हमारे नेत्रों को निकाल करके यह ले गया। हमारी आंखें कृष्ण और बलदेव हैं, किसी का वध कर देना क्रूरता नहीं है, लेकिन जीवित अवस्था में किसी के आंख निकाल लेना ये सबसे भारी क्रूरता है। तो हमारी आंख को निकाल करके पहले ही ले गया, अब तो हमारे लिए सारा जगत शून्य हो रहा है। युगायितम् निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम् शून्यायितम् जगत् सर्वम् गोविंद विरहेण मे। सारा जगत हम सबके लिए सूना हो रहा है गोविंद के विरह में। तो अब यह अक्रूर क्यों आया है? एक गोपी बोली, बहन मैं जानती हूं यह अक्रूर क्यों आया है। यह अपने स्वामी कंस का बड़ा भारी भक्त था, कंस की आज्ञा से ही यह श्री कृष्ण बलदेव को ले गया। अब इसका स्वामी कंस मर गया है, अब उस कंस के श्राद्ध तर्पण के लिए मांस की आवश्यकता होगी। मथुरा में कमी थी क्या मांस की? कहते वो मांस ठीक नहीं, ब्रजवासियों का मांस बहुत अच्छा है। क्यों? कहते श्री कृष्ण विरह की आग से पक चुका है, हम गोपियों के कलेजे का मांस कृष्ण विरह की आग में पक चुका है, बढ़िया परिपक्व मांस है, इस परिपक्व मांस को ये ले जाएगा। किम साधयिष्यत्यस्माभिर् भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम्। लगता है हमारे मांस के द्वारा अपने कंस का पिंडदान करेगा ये। तो एक सखी बोली, क्या तू अपने मांस को दे देगी? कहा मैं सहर्ष दे दूंगी। क्यों दे दूंगी? तो वह गोपी कहती है कि मैं यह तो संतोष कर लूंगी, मैं वहां नहीं जा सकी, प्रियतम मेरे पास नहीं जा सके, मैं उनके पास नहीं पहुंच सकी, तो कम से कम हमारा कलेजा तो वहां पहुंच गया जहां हमारे प्रियतम। इस भाव को श्री मीरा जी के भी एक पद में ऐसा भाव है। मीरा जी कहती हैं, काढ़ कलेजो मैं धरूं, काढ़ कलेजो मैं धरूं, कागा तू ले जाए, जा देसा मारो पिय बसे, वे देखें तू खाए। अरे कौआ, मेरे कलेजे के मांस को लेकर उड़ जा वृंदावन की ओर, जहां श्री यमुना पुलिन में कुंज के नीचे खड़े होकर के कुंज महल में श्याम सुंदर अधर पर वंशी पधरा कर बजा रहे हो, वहां तू मेरे कलेजे को मांस के लेकर पहुंचना और कांव कांव शब्द करके तब खाना। जब वे तुझे कांव कांव करते देखेंगे तो तेरी ओर देखेंगे, और जब तेरी ओर देखेंगे तो तेरे पंजे में दबा हुआ हमारे कलेजे का मांस उसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, बस मैं इसी से कृतकृत्य हो जाऊंगा। हरिशरणम। इस प्रकार से गोपियां भगवान के प्रेम में विह्वल हैं, डूबी भई हैं प्रेम में। इधर गोपियां यमुना जी की ओर जा रही हैं और श्री उद्धव जी यमुना स्नान करके आ रहे हैं। कैसी शोभा है उद्धव जी की, प्रातःकालीन संध्या वंदन करके उद्धव जी आ रहे हैं। तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रजस्त्रियः प्रलंब बाहुम नवकंज लोचनम पीताम्बरम पुष्कर मालिनम लसन मुखार बिंदम मणिमृष्ट कुंडलम। श्री कृष्ण को आया हुआ देख करके प्रलंब बाहु सुंदर कृष्णानुचरम वीक्ष, कृष्ण के अनुचर को देख करके जिनके कंजदल के समान विशाल नेत्र हैं, आजानुलंबित भुजाएं हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, कमल की माला कंठ में धारण किए हुए हैं। देखो ठाकुर जी ने उद्धव जी को अपना मोर मुकुट गुंजामाला और पीतांबर उड़ाकर भेजा। रंग रूप तो ठाकुर जी जैसा है ही है, नील वर्ण है उद्धव जी का, कमल दल समान विशाल नेत्र हैं, आजानुलंबित भुजाएं हैं, देखने में लगता मानो श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब हो, और ठाकुर जी ने अपना पीतांबर भी उन्हें दे दिया है, मोर मुकुट भी दे दिया है, गुंजामाला भी दे दी है। क्यों? कि गोपियों के नेत्रों में केवल मेरा ही रूप समाया हुआ है, यदि उद्धव उद्धव के रूप से गए तो हो सकता है उनका वार्तालाप भी न हो इनसे, इसलिए उद्धव जी को अपना स्वरूप दे करके भेजा है। एक बार तो गोपियों के लगा कि साक्षात श्याम सुंदर आ गए क्या, लेकिन जैसे ही निकट गई तो अयंतु कृष्णानुचर इति वीक्ष, ये कृष्ण नहीं है अपितु कृष्ण श्यानुचर, ये श्री कृष्ण का सेवक है, ये पता निकट जाकर लगा। पहले तो यही लगा कि श्याम सुंदर आ गए। आप लोग कहेंगे जब एक रूप ही है तो पता कैसे लगा, नेत्रों से पता लग गया। बोलो वृंदावन बिहारी, श्री कृष्ण के नेत्र चंचल और चपल है, और उद्धव जी संत हैं, संतों के नेत्रों में गंभीरता होती है। तो उद्धव जी महान संत हैं, फिर ज्ञानी तो नेत्रों में अतिशय गंभीर है, ऐसे चल रहे मानो सहज उन्मुनि मुद्रा लगी गई हो, सहज उन्मुनि में चल रहे श्री कृष्ण का करते हुए चल रहे हैं। बोले इतनी सिधाई, इतनी गम, इस प्रकार चपलता का अभाव, तो श्री कृष्ण के किसी अन्य शरणागत श्री कृष्ण की हो जाए संभव, नेत्रों से पहचान हो जाए। क्षणानंद सरस्वती चर्चा, अभी एक दिन हम शरीर से दिव्य सुगन आप रूप से, अभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी सतत नेत्रों में गांव नारी दर्शन, और किसी महात्मा थे विरक्ति को देखा तो वो अपनी सखी से सज धज के घूम रही है, मुझे पहचानते हो, किस बात के विरक्त हो गए, अभी तो मुझे पहचानते हो, झूठा है तुम्हारा वैराग्य। वो महात्मा को इतनी ग्लानी हो गई कि उसके बाद उन्होंने किसी की ओर देखा ही नहीं, बस नीचे ही दृष्टि वे सदा किए रहे, कभी किसी की ओर नहीं देखा। बोले न किसी को देखना, न किसी को पहचानना, केवल राम राम करना है। संतों की दृष्टि में गांभीर्य होता है, उनके नेत्रों में करुणा होती है, वे आंख उठाकर देखते हैं तो केवल किसी संत की ओर देखते हैं या श्री ठाकुर जी की ओर देखते हैं, वे प्राकृत जगत की किसी वस्तु की ओर आंख उठा करके नहीं देखते। और चित्त को चंचल करने वाली इंद्रिय, सर्वाधिक चित्त को चंचल करने वाली यदि कोई इंद्रिय है तो वह दृग इंद्रिय है, दृष्टि ही चित्त को चंचल करती है। जो नेत्रहीन होते हैं वे बहुत जल्दी किसी बात को याद कर लेते हैं, क्यों, शक्ति सबके भीतर वही स्मरण शक्ति है, लेकिन उनकी आंख नहीं है तो बस उनकी वृत्ति जो है सिमटी भई है, वो उसमें चंचलता नहीं है, वृत्ति चंचल नहीं है क्योंकि उनकी आंख नहीं है। तो वृत्ति चंचल न होने के कारण जो कुछ भी सुनते हैं उसे धारण कर लेते, उसे याद कर लेते हैं। और दृष्टि को सर्वाधिक, चित्त को सर्वाधिक चंचल करने वाली ये दृष्टि है, आंख बंद करने पर भी दृष्टि अपनी चंचलता नहीं छोड़ती। आप लोग कहेंगे आंख बंद करने पर चंचलता नहीं छोड़ती, इसका क्या मतलब हुआ, आंख से जो दृश्य दिखा है ना, आंख बंद करके भी फिर वही दृश्य दिखाई देता है, और आंख ने देखा ही नहीं होता कोई दृश्य तो क्या चिंतन होता। तो आंख बंद करने के बाद भी वह संसार के दृश्य का ही अनुभव कराती है, इतना चित्त को चंचल करने वाली दृग इंद्रिय है। इसलिए महात्मा लोग वे अपनी आंखों को संयमित रखते हैं, आंख कान दोनों को संयमित रखते हैं। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाहा, भद्रं पश्ये माक्षभिर्जत्राहा, स्त्री रंगईस्तुष्टुवाग्मुसस्तनूर्भिभ्यसे मही देवहितंजदायु। प्रार्थना करते हैं भगवान से, हमारी आंख पवित्र दृश्य देखे, हमारे कान पवित्र शब्द सुने, इधर उधर के दृश्य इधर उधर की बात हमारे आंख नाक कान अनुभव न करें, हमारी आंख संयमित हो, हमारा कान संयमित हो, प्रार्थना करते हैं। तो श्री उद्धव जी के निकट वे पहुंच गए और कहा, जानीमस्त्वाम यदुपते पार्षदम समुपागतम। हे उद्धव जी, आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम पहचान गई, हमारे प्रियतम ने तुम्हें भेजा है, प्रिय करने के लिए भेजा है। गोपियों में ऐसी त्रिकालज्ञता आ चुकी है कि बिना बताए तो वो नाम ले रही है और कहती जानीमस्त्वाम, तुमको अच्छी प्रकार से मैं जानती हूं। कोई अज्ञानी पुरुष कह सकता कि हम तुम्हें जानते हैं, गोपियां कहती हम सब तुमको जानती हैं। क्यों जानती हैं, कहते इसलिए जानती हैं कि हमने जानने योग्य तत्व श्री कृष्ण को जान लिया, और यस्मिन ज्ञाते सर्वमिदम ज्ञातम भवती, उस एक तत्व को जानने के बाद फिर कुछ भी अज्ञात रहता नहीं है। माने गोपियां सूक्ष्म भाव से ये कह रही हैं कि तुम हमको मूर्ख मत समझना कि हम कुछ नहीं जानती हैं, हम जानने योग्य तत्व जो श्री कृष्ण तत्व है उसे जानती हैं, और जब श्री कृष्ण को जानती हैं तो कोई त्रिभुवन का विषय ऐसा नहीं जो हमारे द्वारा अज्ञात हो। तो उपनिषद कहता है यस्मिन ज्ञाते सर्वमिदम ज्ञातम भवती, भगवान के ज्ञान होने पर सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, कुछ भी अज्ञात नहीं रह जाता। हम जानती हैं आपको अच्छी प्रकार से, और यह भी जानती हैं कि आप हमको यह समझाने आए हैं कि तुम रो मत। गोपियां कह रही हैं, यह भी हम जानती हैं कि आप यह कहने आए हैं कि हमको यह सलाह देने आए हैं, अपने ज्ञान का उपदेश दे करके यह समझाने आए हैं अपने ज्ञानोपदेश के द्वारा कि हम रोना गाना बंद करें। तो देखो उद्धव, तुम समझते नहीं हो। स्नानुबंधो स्नेहानुबंधो बंधूनाम मुनेरपि सुदुस्त्यजा। यह स्नेहानुबंध प्रेम का संबंध ऐसा है, प्रेम का संबंध ऐसा संबंध है कि मुनेह अपि सुदुस्त्यजा। मुनि माने जो निरंतर मनन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, अपने आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, ऐसे मननशील मुनि भी प्रेम संबंध को ठुकरा नहीं पाते हैं। हम कोई ऋषि मुनि हैं? हम तो भोली भाली ग्वालिन हैं। हम प्रेम के संबंध को कैसे भुला दें? ये तुम्हारे ज्ञान का प्रभाव हमारे चित्त के ऊपर हो नहीं सकता है। हे उद्धव, और तुम श्री कृष्ण की क्या बात हमसे समझाओगे, क्या कहोगे? हम तो अच्छी प्रकार से जानते हैं। तब तक एक गोपी बोली कि अरे नेक, लाज शर्म तो करो, ये बिचारे कहां से चल के आए हैं, वो खड़े खड़े बता रही हो सब घेर के, इनको बैठ जाओ, क्योंकि हमारी बातचीत कोई मिनट दो मिनट की बातचीत तो है नहीं। वही श्याम सुंदर ही रोम रोम में भरे हुए, उनकी बात तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो इतने जल्दी तो बात पूरी होगी नहीं श्याम सुंदर की बात, इसके लिए समय अपेक्षित है, खड़े खड़े कब तक बातचीत होगी। तो उन गोपियों ने क्या किया, एक दो गोपियों ने अपनी ओढ़नी चौपर्त करके बिछा दी, कहा आप इस पर बैठ जाइए। उद्धव जी बहुत संकोच में पड़ गए, कहा नहीं नहीं, ये बड़ा पवित्र वस्त्र है, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम के जल से अभिषिक्त वस्त्र है, इसलिए बहुत पवित्र है, इस पर आप बैठ जाइए। उद्धव जी बैठे हैं, और बैठते ही उद्धव जी के रोमांच हो गया, अश्रुपात पुलक कंप सात्विक भाव प्रकट हो गए। ए महाराज, प्रेम एक भारी संक्रामक रोग है, प्रेमी देख ले तो प्रेम जागृत हो जाए, प्रेमी छू दे तो प्रेम जागृत हो जाए, प्रेमी का वस्त्र छू ले तो प्रेम जागृत हो जाए। श्रीमन महाप्रभु जी महाभाव में समुद्र में डूब गए, महाजाल में उनको निकाला गया, और जिन मछुआरों ने श्री महाप्रभु के श्रीअंग का स्पर्श किया वे भी प्रेम में उन्मत्त होकर के नृत्य करने लग गए। वे मछुआरे हिंसा जीवी, दिन रात हिंसा करने वाले, मद्यपान करने वाले, मांस भक्षण करने वाले, जीवों की हिंसा करने वाले, उनसे अधिक पापिष्ठ तर और कौन होगा? वे जब महाप्रभु जी के श्रृंग को छूते हैं तो वे हरिबोल हरिबोल करके नाचने लग जाते हैं, उनमें प्रेम प्रकट हो जाता है। तो अन्य किसकी क्या कहना,